राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
वेदों में और गीता में तीन कांड का वर्णन है। एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है। वेदों की बात जैसे सुनी है, 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ऐसा सुना है। गीता में भी पहला सर्ग है, उसमें कर्म कांड का वर्णन कहते हैं, बीच में 6,000 वो उपासना कांड के हैं, आगे 6,000 ज्ञान कांड के हैं। ऐसे श्री मधुसूदनाचार्य ने लिखा है। तो पहले कांड में मन 6 अध्यायों में कर्म का वर्णन भी है, ज्ञान का वर्णन भी है, उपासना का वर्णन भी है। अंतिम ज्ञान कांड कहते हैं, उसमें है ज्ञान का विवरण 13-14 2 अध्याय में विशेष रूप से है और 18 में है और बहुत थोड़ा आता है। जितना ज्ञान कांड का आता है उत्तर कांड में ज्ञान का वर्ण, उससे पहले में कर्म कांड का अधिक वर्ण है और जितना कर्म कांड का वर्ण उससे अधिक मध्यम कांड में मानो 6 से 7 से 12 तक इसमें भक्ति का वर्ण विशेषता से है। भगवान की भक्ति का वर्ण गीता में मुख्यता से आया है, उसमें भी शरणागति खास कही है भगवान ने। पहले भी अर्जुन शरण हुए हैं तब तो उपदेश दिया है, छैया सनातन विकथन भोजन आदि स्वेख्यात वयस्तवान प्रलब्ध चक्षु सखेव प्रवस्त सर्वम से हे महान मधुमया साधन। तो सब साथ में हरदम भगवान रहते थे, परंतु जब शरण होकर के पूछते हैं तब गीता का उपदेश देते हैं, नहीं तो युद्ध के चलने की तरह ही है। पहले अध्याय के 20वें में असत व्यवस्था निष्वादी करके प्रवृत्ते शस्त्र संपा से शस्त्र संपा की तैयारी होगी, बस कटाकट बांध चलने वाले हैं। ऐसे मौके में भगवान ने गीता उपदेश दिया, कोई एकांत ऐसी जगह नहीं थी विवक्ष ज्ञान का वर्णन करने की। परंतु अर्जुन सम्मुख हो गए, अर्जुन सम्मुख क्यों हुए कि वो धर्म सम्मूढ़ चेता, अगर युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है परंतु अपने कुल के बड़े बड़े आचार्य हैं उनके मारने का पाप लगता है। दो बड़े होते दो संबंध से, एक अपनी वंश परंपरा से जो बूढ़े होते हैं वे होते हैं, एक हमारे गुरुजन होते हैं जिनके विद्यालय है गुरु है वे बड़े हैं। तो कुल परंपरा में भीष्म जी महाराज है और गुरु में श्री द्रोणाचार्य है। कदम भीष्म हम संशय द्रोणंश मधुसूदन लोगों नाम लिया है। तो ऐसे गुरुजनों को कैसे मारूं? अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर सके। छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना धर्म है और गुरुजनों को मारना पाप है अधर्म है। तो पृथ्वीताम धर्म से मूढ़ चेता, धर्म का निर्णय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, इस बात से पूछता हूँ, ऐसे अर्जुन ने पूछा है। और आपके सर्व शिक्षा दीजिए। तो भगवान ऐसे सरल होने से उपदेश देते हैं, मानो जहां उपदेश की आवश्यकता होती है, उपदेश की भूख जब तक नहीं लगी तो साथ में रहते हुए भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया। समय तो पहले बहुत मिलता था, चलना फिरना खाना पीना स्नान और घूमना आदि साथ में होता था, परंतु वो सन्मुख नहीं हुआ तब तो उपदेश नहीं दिया। जब सन्मुख हो गए साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके सर्व मेरे को शिक्षा दीजिए, तब भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश तय तय का दे करके अंत ने अर्जुन के लिए भक्ति खास बताई। ज्ञान के विषय में कहा पद्धति परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेश शांति से ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, ज्ञान का उपदेश तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञान ही देंगे, मैं तो उपदेश भक्ति का देता हूँ। इस बार से अंत में भक्ति का ही उपदेश दिया। 18 अध्याय 56 से 66 तक 11 श्लोकों में विशेष भक्ति का वर्णन किया। अंत में कहा माम एकम शरणम व्रज, केवल अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाए, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। अर्जुन के डर था पाप होने का, भगवान कहते तुम पाप से डरो मत, मेरी अनन्य शरण माम एकम अनन्य शरण हो जाओ। तो ऐसे ऐसे वर्णन किया। तो शास्त्रों में कर्म का वर्णन भी आता है, उपासना का और ज्ञान का वर्णन आता है। कर्मों का वर्णन इतना विस्तार से हरेक जगह नहीं मिलता, ना को मिलता है कथाओं में ना पुस्तकों में, विशेष चर्चा नहीं होती। ज्ञान की भक्ति की चर्चा होती है विशेषता से, कर्मों की विशेष चर्चा नहीं होती। भगवान ने थोड़े नहीं कहा, अपने बड़ा कर्म का बड़ा रहस्य बताया भगवान ने। और गहना कर्मणो गति, किन कर्म क्रमा के योगी कवियों तत्र मोहिता, बड़े बड़े पंडित देश में मोहित हो जाते हैं, वो कर्म कहूंगा तेरे को, ऐसे कर्मों का वर्णन भगवान ने किया है। तो गीता में कर्म उपासना ज्ञान तीनों का बड़ा विषम वर्णन है। ग्रंथ छोटा होने पर भी वर्णन करने में अधूरापन नहीं है, एक एक बात को दो तीन बार भी कह दिया है और खूब अच्छे से वर्णन किया है। भगवान की वाणी विचित्र है, इस बात से श्रीधरे में श्रीधराचार्य लिखते हैं, शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्य से एक वक्रता, शेष भगवान शरीर के शुद्धि के लिए चरक बनाया, वाणी को शुद्ध के लिए महाभाष्य बनाया, मन को शुद्ध करने के लिए पातंत्र योग दर्शन बनाया, शरीर वाणी मन तीनों को शुद्ध करने के लिए अद्वितीय ग्रंथ बनाया, वैसे कोई ग्रंथ इस विषय में है नहीं। ऐसा वर्ण करने वाले हजार मुख शेष गए, उनकी चतुरता को एक मुख से कहने वाले भगवान श्री कृष्ण शेष मुख, उनसे चतुरता है वो भगवान एक मुख से कहते हैं, ऐसा वर्ण करते हैं। तो कर्मों का वर्ण बड़ा विशुद्ध रूप से किया है। अपने साधक संजीवनी के 18वें अध्याय में 12वें अध्याय पर 12वें श्लोक पर 18वें अध्याय में 12वें श्लोक पर कर्मों का वर्णन है। कोई देखना चाहे तो वो पढ़े और मनन करे, फिर शंका हो तो पूछे। ऐसा पढ़ो मन लगा करके, उसमें कई बातें मिल जाएगी। मनुष्य के भीतर की कई शंकाएं होती है उसका समाधान होता है। साधक संजीवनी है, तत्व वेत्री है, इसमें बहुत अच्छा विवेचन हुआ है, तो इन टीकाओं के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। ऐसा लोगों ने कहा है, मैंने सुना है, इसको उसको पढ़ो। तो कर्मों के विषय में आज कुछ थोड़ी बातें बता रहे। कर्म है वे क्रियमान है, संचित है और प्रारब्ध, तीन तरह के हैं। अभी जो हम काम करते हैं ये क्रियमान कर्म है, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म होते हैं। क्रियमान जो करते हैं, शुभ अशुभ पाप पुण्य, वो क्रियमान कर्म है। और क्रियमान कर्मों का संग्रह जिसमें होता है उस खजाने को कोष कहते हैं, वो संचित है। वो कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्मों में से शरीर जब बनता है तो शरीर के भोगने के लिए कर्म किए जाते कहे जाते हैं कि ये शरीर है, कर्म भोगे जाएंगे। उस कर्म विभाग का नाम प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध आरंभ हो गया है फल देने के लिए, वो प्रारब्ध है। संचित वो फल नहीं देते, अभी वैसे ही पड़े हैं। और क्रियमान नए नए कर्म होते हैं, संचित में भर्ती होते रहते हैं। इनमें एक बात और समझने की है, कर्म करते हैं तो एक तो कर्म बनता है मनु, शुभ अशुभ फल बनता है, और एक कर्मों का अभ्यास होता है, स्वभाव बनता है। जैसे कहीं नौकरी करते हैं तो वो अब वही खाता लगता है, तो एक तो वही खाता में देखा जाना होता है, एक उनकी तनख्वाह मिलती है, दो बात होती है। ऐसे ही कर्म करने से शुभ अशुभ जमा होता है, वो तनख्वाह है। और जो करते हैं क्रियमान उनके संस्कार पड़ते हैं, एक स्वभाव बनता है, एक आदत बनती है, जिससे मनुष्य अगाड़ी प्रवृत्त होता है। तो स्वभाव अंश है वो रहता है, एक एक फल अंश रहता है। फल होता है वो सुख दुख रूप परिस्थिति के रूप से आता है। पाप का फल परिस्थिति प्रतिकूल आ जाती है, पुण्य का फल परिस्थिति शुभ आ जाती है, अच्छी आ जाती है। वे फल आता है ऐसा भोगने के लिए, वो कर्मों का फल होता है। वे कर्म करवाते नहीं, वे फल भोगवाते हैं, कर्म नहीं करवाते। संचित से फूलना होती है, प्रारब्ध तो फल बनना फल देने के लिए है, और संचित है उसकी फूलना होती है। कई फूलना संचित की होती है और कई कई फूलना अपने कर्म करते उसके भी होती है अंतःकरण में। तो एक कर्म विभाग फल विभाग है, एक भीतर का मनोराज फूलना विभाग है, ऐसे होता है। फूलना विभाग को हम अच्छी फूलना के द्वारा रोक करके शुद्ध कर लेते हैं। कर्मों का फल भोगना पड़े जो भोग करके उनको भी नष्ट कर देते हैं, संचित पड़े रहते हैं। जब भगवान के शरण हो जाते हैं सर्वथा, अथवा तत्व ज्ञान हो जाता है, तो सब संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर उसे फल देने वाले नहीं रहते। प्रारब्ध के अनुसार जीवन मुक्त की अवस्था में उनके शुभ अशुभ परिस्थिति सामने आती रहती है। कर्मों का फल परिस्थिति है, ये विशेष याद रखने की बात है। सुखी दुखी बनाना कर्मों का फल नहीं है, सुखी दुखी बनाना है मूर्ता का फल, मूर्खता का, बेसमझी का फल है। समझ अगर हो जाती है, ठीक समझ लेते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्नता रहती है, अनुकूल में भी प्रसन्नता रहती है, हम दुखी नहीं होते। तो ये ज्ञान के अधीन है, सत्संग सत्सार और सद्विचार, इनके द्वारा ये बोध होता है। उस बोध के होने से प्रतिकूल परिस्थिति असर नहीं करती, ऐसे अनुकूल परिस्थिति भी अभिमान नहीं करती, वे सब आ जाती है अनुकूल प्रतिकूल रूप से। अगर ये काम कराने में भी हेतु नहीं है, पुराने कर्मों का फल भोगने में हेतु है। फल देते हैं तो फल में प्रतिकूल परिस्थिति पापों के कारण आती है, परंतु सद्विचार रहा है, सत्सासों का प्रश्न किया है, सत्संग किया है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। कोई बीमारी भोगता है, कोई दुख पाता है, कहते हैं कर्मों का फल पा रहा है, तो कर्मों का फल तो ठीक है, परंतु वो दुखी हो रहा है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। रहते हुए मूर्खों को दूर करने समझ आ जाए ठीक तरह से, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम दुखी नहीं होंगे और अनुकूल परिस्थिति में भी अभिमान नहीं करेंगे। जब हम सावधान रहेंगे, असावधान रहे तो अनुकूलता में अभिमान, प्रतिकूलता में दुख, ये होता है। तो ये होता है बेसमझी से, सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा हम अज्ञान को मिटा सकते हैं, जिससे हम संसार के सुख दुख से ऊंचे उठ सकते हैं। इनमें बंधा रहेगा संसार में, राग द्वेष करेगा तो उसको अनुकूल प्रतिकूल का फल भोगना पड़ेगा, राजी नाराजी होगी, सुख दुख होंगे। तो ये राग द्वेष न करना, सुख दुखी न होना, ये ज्ञान का, उपासना का, सत्संग का, सत्शास्त्रों का, सद्विचार का फल है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि पुराने कर्म जो हम कर चुके हैं उनका तो हम क्या करें, हो चुके हैं, प्राग बन चुका, उसका तो आएगा, परंतु अगाड़ी काम शुभ करें, अच्छा काम करें, तो अच्छा काम करने से हम अगाड़ी उन्नति कर लेते हैं। जैसे कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं उसमें थोड़ी नीम खोदकर, उसमें मसाला दबाकर, पत्थर आदि देकर नीम को मजबूत करते हैं, उसको ठीक मजबूत करके उसके दीवार चुनते हैं, तो दीवार बनाने वाला दीवार पर ही बैठा बना रहा है, वो जमा कर रहा है, तो भाई एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला तक मकान चला जाता है। वो अपने ही अपने जमा करने से, अपने ईंट चूना पत्थर देने से वो ऊंचा चला जाता है। अरे कुआं खोदने वाला खोद करके अपनी मिट्टी निकालता रहता है, निकालते निकालते 10-20-50 हजार में 50 पुरुष नीचे चला जाता है, ऐसे नीचे जाता है। तो ऐसा कुप खड़का ऐसा प्रकार का रखा, जैसे कुप खड़ने वाला नीचा चला जाता है, क्योंकि नीचे से अपनी आधार मिट्टी को निकाल कर फेंकने से नीचा चला जाता है, और वहां जमा करने से ऊंचा चला जाता है। इस वास्ते शुभ अशुभ काम करने से आप उन्नत और अवनत होते हैं। तो अच्छा काम करें तो ऊंचा चढ़ जाएंगे, और मिट्टी खोल खोल नीचे से निकालेंगे, पाप करेंगे, अन्याय करेंगे, तो नीचे चले जाएंगे। इस वास्ते ऊंचे जाना, नीचे जाना, मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। कर्म बनते हैं शास्त्र से, विचार से, संग से, तो कुसंग से खराब काम करते हैं वो पतन हो जाता है। कुसंग करते हैं उसमें उपन्यास पढ़ते हैं, तरह तरह के खेल तमाशा देखते हैं, उनमें गंदे गंदे चित्र देख करके मृत्यु गंदी हो जाती है। आजकल गंदगी का प्रचार बहुत हो रहा है कलयुग के कारण से, कुसंग के कारण से मनुष्य का पतन होता है। सत्शास्त्रों का जहाँ पतन होना चाहिए वो बड़े बड़े उपन्यास और गंदे गंदे साहित्य गल्प आदि जिसमें लिखे हुए ऐसी पुस्तकों के पढ़ने से अंतकरण भ्रष्ट हो जाता है, भाव नष्ट हो जाते हैं। नास्तिकता के ग्रंथ पढ़ने से धर्म से और ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। इन पुस्तकों का प्रचार आज हो रहा है और हमारे छोटे छोटे बालक वो उन पढ़ करके बड़े पसंद बन जा रहे हैं। ईश्वर को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम धर्म नहीं मानते, कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ ज्ञान ही नहीं होता, पशुओं की तरह ही उनका आचरण होता है। शूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनाथ। सब ऐसे ही शूकर कूकर ऊंट की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना, सदविचार करना, देश बदलना, ये मनुष्य का धर्म है। इसमें जो संग होता है, संग से स्वतः उन्नति अवन्नति होती है। संग का बड़ा विचित्र असर पड़ता है। कुसंग में आदमी का पतन होता है, सत्संग में उत्थान होता है। सत्संग में बने रहे तो बहुत लाभ होता है। धीरे धीरे विशेषता से बातों का ज्ञान हो जाता है। केवल शास्त्रों के पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। मार्मिक बातें जो पुस्तकों के द्वारा पढ़ने पर समझ में नहीं आती, ऐसी ऐसी बातें सत्संग के द्वारा सुगमतापूर्वक समझ में आ जाती है। तो सत्संग मेरे पास बड़ा अच्छा है। भाग्योदयन बताया, भाग्योदयन सत्संग मंच लभते पुरुषोदा भाई, अज्ञान भेद कृतमोह मदांधकार नाशन विधाय तदा उदय उदय थे विवेक। सत्संग भाग्योदय सत्संग लभते, अच्छे भाग्य से सत्संग मिल जाता है। संतों की कृपा से भाग्यों से भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। संत विशुद्ध मेरे परिचय ही चित में राम कृपा कर जे, विशेष कृपा दृष्टि भगवान की होती है तब सत्संग मिलता है। और सत्संग के द्वारा आदमी को सूझता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को जानता नहीं है। राम माया सतगु दयाल साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कसूर है वो विषय रसूर हो, विषयों में भोगों में फंसा हुआ है। राम माया सतगु दया भगवान की कृपा हो, संतों की गुरुजनों की कृपा हो तब साधु संग होता है। साधु संग करने से प्राणी जाने को तो ये प्राणी को जानता है, नहीं तो उसको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आशु संपत्ति वालों के लिए गीता में लिखा है प्रवृत्तिरासुरा, आसुर प्रवृत्ति वाले जन क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बात को जानते नहीं। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका पता ही नहीं। आसुरित रखते आसुर नाम प्राण पोषण पर आए, केवल प्राण पोषण कर रहा, खा पी रहना सो जाना, केवल यही बात जानते हैं। ये पशुओं में होती है तो वे मनुष्य शरीर में होते हुए भी पशु ही है। मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी, रूप तो मनुष्यों का है परंतु है पशु ही। देख रहे में तो मनुष्य दिखते हैं पर मनुष्यता जिसमें नहीं है वो मनुष्य नहीं है। अपने असली तत्व को जानने के लिए मिला हुआ मनुष्य जन्म निरर्थक खो देते हैं। और पापों के करने में तो नरकों की तैयारी 84 लाख जोड़ी की तैयारी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं तो बड़ा भारी नुकसान होता है। अच्छा मौका मिलने पर भाई अच्छा काम करो जिससे अगर उन्नति हो जाए, नहीं तो पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो जिससे कि अपनी दुर्गति हो जाए। तो ये बात सत्संग के बिना आदमी जानता नहीं। पशु की तरह ही रहता है। बालक होता है तो उनको विवेक नहीं होता, चाहे जो करता है माता पिता को चाहिए उनको समझावे बचपन से ही, तो वो समझ जाता है। और बचपन से अगर अभ्यास करता है तो बड़ा अच्छा महात्मा बन जाता है। बालकपन से ही अच्छा संग मिले, अच्छा काम करे तो वो बड़ा अच्छा बन जाता है। इनमें सबसे पहला गुरु माँ होती है। माता बालकों को अच्छा बनावे तो बालक अच्छे बनते हैं सुगमता से। जब पेट में होता है तभी माताओं को चाहिए कि भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़े, भगवान के चित्रों को देखे, भक्तों के चित्रों को देखे, भगवत संबंधी बातों को सुने और भगवत संबंधी तीर्थ आदि उनमें रहे। उनके संस्कार पढ़ने से बालक पर भी संस्कार पढ़ते हैं, बालक अच्छा होता है। प्रहलाद जी महाराज हुए तो वो गर्भ में ही समझदार बन गए। नारद जी महाराज का आश्रम किया, गर्भाधान समय भी पिताजी वो आए थे तपस्या करके, तो बहुत दिन मैं आऊंगा, बस पहले ही आ गए तो स्त्री ने पूछा, एकांत में बातें हुई, कहते क्या करूं ऐसे मेरे बड़ा विघ्न किया, देवताओं ने देखा कि तपस्या करके वरदान पा देगा तो बहुत नुकसान करेगा, तो उनको बहुत घसीटा, मार पीट गई, सब किया, बन ये अपना तब उसमें लगे रहे, छोड़ा नहीं। तो इसके काल में विष्णु 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 भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई तो वो बार साथ में साथ द्वेष बैर था तो वो उठा मारने लगा। तो विचार किया भाई अब तपस्या भंग हो गई तो घर जावे मिल जावे, ऐसा विचार कर आ गया। तो एक आदमी स्त्री ने पूछा कि आप तो आने वाले नहीं थे, कैसे आए? तो वो बात बताई, घटना बनाते बताते, जब विष्णु विष्णु नाम लिया गर्भाधान हुआ तो विष्णु भगवान का नाम लेने से वो संस्कार उसके पड़े। फिर नारद जी ने कयाधु को रखा अपने यहाँ, इंद्र वो घर में था तो वो पिताजी जो चले गए तपस्या करने के लिए, पीछे से इंद्र ने लूटपाट की और नागो को नष्ट किया। और माता कयाधु थी जिसके पेट में था प्रहलाद, उसको पकड़ बुझाने लगा, वो बेचारे अबला क्या करे, तो नारद जी मिल गए, करे जिससे अबाली अबला को गुंदू देता है, तेरे साथ अबला ने क्या बैर किया? कहते बैर तो नहीं किया है, इसका पति बैर ये अबारा नाश करता है, तो इसका गर्व है भीतर में, एक वो भी अबार इतना दुख दे रहा है, बाप बेटा दो हो जाते मजा क्या करेंगे, इस वास्ते ले जाता हूँ जन्म का तब मार दूंगा, तो दो तो बैर न हो। नारद जी ने कहा नहीं तेरा बैर नहीं होगा इसमें, तुम छोड़ दे। तो नारद जी के कहने से उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने एकांत को कुटिया में रखा कि बेटी तू निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, बड़ा अच्छी से ऐसे कन्या की तरह उसका पालन किया, गर्भवती थी सब तरह से रक्षा करी, और वो सत्संग सुनाते थे, कीर्तन भजन सुनाते थे। प्रहलाद जी को लक्ष्य करके, जो भीतर में प्रहलाद है उसको लक्ष्य करके सुनाते थे, तो वो प्रहलाद जी गर्भ में ही सुन ली बातें, भगवान की बातें गर्भाधान में हुआ और गर्भ अवस्था में हुआ। फिर वो तपस्या करके आया तो उसको सौंप दिया, बोले तुम्हारी स्त्री ले जाओ। तो वह बालक जन्मा प्रहलाद, तो भगवान का भक्त जन्मा। तो बहनों माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, घर में हो तो बहन बेटी हो, उनको बहू हो तो उनको ठीक तरह से रखे, उनकी सेवा करे, भगवत संबंधी बातें सुनावे, भगवान के चरित्र सुनावे, कृष्ण भगवान के राम जी के, भक्तों के चरित्र सुनावे, भगवान नाम सुनावे, भगवान नाम कीर्तन करे करावे, इससे उन पर अच्छा असर पड़ता है। तो गर्भस्थ बालक भी बड़े शुद्ध निर्मल होते हैं। तो सत्संग से मनुष्य का सुधार होता है, सद्भावों से सुधार होता है, सत्शास्त्रों से सुधार होता है, तो वो कर्मों में फंसने पर भी वो डावाडोल नहीं होगा। आगमा पाए नो अनित्यास्ता सुख दुख दोनों को सह देते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिनकाई, जड़ होते हैं सुख में हर्ष होते हैं, हर्षित होते हैं दुख में उदास हो जाते हैं। सुख हर्ष जड़ दुख बिनकाई, जड़ होते हैं सुख में हर्ष होते हैं, हर्षित होते हैं दुख में उदास हो जाते हैं। अगौ समीय धरे मन माई, पंडित समझदार होते हैं। ये तो सुख दुख तो दिन रात्रि वक्त, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे आते जाते हैं, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता तो संसार का स्वरूप है, ये आते जाते रहते हैं। तो विचारवान उनमें विचलित नहीं होते, तो सत्संग करने से लाभ होता है। अब पीछा वही लेते हैं कि शुभ अशुभ कर्म करते हैं, उनके संस्कार पड़ते हैं। एक तो नए कर्म करने का स्वभाव बनता है और एक उसका फल बनता है। फल अंश तो संचित में रहता है, स्वभाव अंश रहता है अपने अंतकरण में, अभी वर्तमान में भी, और वर्तमान में भी स्वभाव कौन सा जो अभी नया करते हैं, नया सत्संग उठता है तो नए सत्संग के संस्कार रहते हैं। स्वप्न भी संस्कार नया आएगा, कभी कभी पुराने भी आ जाते हैं, जो कभी सुना देखा नहीं ऐसे ऐसे भी स्वप्न आ जाते हैं, तो ऐसे मिले हुए स्वप्न आ जाते हैं। पर विशेष संस्कार नए कर्मों का रहता है, तो नए कर्म अच्छे काम करें, अच्छे संग से, अच्छे शास्त्रों से, तो बड़ी शिक्षादायक अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़े, और अच्छे अच्छे भाव हैं अपने में बनावे, और अच्छे अच्छे कर्म भी करें। कर्मों से भीतर में भाव बनता है, भाव से कर्म बनते हैं। यदि मनसा ध्यायति तद वाचा बदति, यद वाचा बदति देव कर्मणा करोति। जैसा ध्यान होता है भीतर में भाव आते, वैसे बोलता है, वैसे ही कर्म करता है, तो भाव भीतर के बनते हैं कर्मों से, कर्मों से भाव, भाव से कर्म, दोनों आपस में अन्योन्याश्रित होते हैं। इस तरह से अच्छे काम अच्छे भाव करते रहे। तो अशुभ शुभ दो कर्म है। तो स्वीयताम धर्म सर्वस्वम स्वस्थ्यवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्योंकि धर्म का सर्वस्व सुन लो और सुनकर धारण कर लो। अपने प्रतिकूल लगती है, विशेष बुरी लगती है, ऐसा व्यवहार, ऐसी बातें दूसरों के साथ न करें। अनुकूल लगती है वैसा करें उसमें जितना हो सके, परंतु जो हमारे को बुरी लगती है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करें। अपने भावों को शुद्ध बनावे, कर्मों को शुद्ध बनावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सबके सुख सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे भाव को रख करके सबके साथ प्रेम का, आदर का और उनके हित का बर्ताव करें। ऐसा बर्ताव करने से अपना अंतरंग शुद्ध होता है, प्रसन्नता होती है, आयु बढ़ती है। उससे बुरे कर्म करने धोखड़ी तेजी से चलती है तो जल्दी मरता है, शांति रहती है, उपकार करता है, तो शांति में श्वास धीरे चलते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है। मानो श्वास तो उतने ही रहते हैं परंतु समय बढ़ जाता है। इस वास्ते बुरे कर्म करने से आयु घटती है, इज्जत घटती है, प्रतिष्ठा घटती है, और लोगों में बुरा कहलाता है। सब लोग उसकी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, और भला काम करने वालों को सब भला कहते हैं, अच्छा करते हैं। वरु भल बास नरक कर पाता, दुष्ट संग जन दे ही विधाता। नरकों में निवास हो जाए तो बेशक हो, पर दुष्टों का संग ना हो। वो नरक से भी नीचे है। नरकों में तो पाप का फल भोग करके पवित्र होते हैं, और दुष्टों के संग से, नास्तिकों के संग से, जो वर्ण आश्रम आदि नहीं मानते, साध कर्म आदि नहीं मानते, परलोक लोग नहीं मानते, ऐसे दुष्टों के संग से पाप बढ़ते हैं नए। तो नरक में तो पाप कटते हैं, कुसंग में नए पैदा होते हैं। इस वजह से बनु भल वास नरक करता था, नरकों में निवास हो जाए तो भला है, दुष्ट संग जन दे ही विधाता, दुष्टों का संग न दे। तो जैसे दुष्टों का सदपतन में कारण होता है, ऐसे सज्जनों का भाई हो बैज हो तो उनका सज्जन पुरुष है, सज्जन स्त्रिया है, बैजो माता है, जिनका भाव बड़ा सात्विक है, भजन ध्यान में लगे हैं, उनके संग से अपने को लाभ होता है। तो कुसंग न करे और आत्मा प्रति बोला नहीं, हमारे साथ जो बर्ताव करते हैं वे बुरे बर्ताव करे, हमारे शांति जिसने बुरा बर्ताव किया तो वह बुरा बर्ताव वालों के साथ न करे। अच्छे बर्ताव की पहचान होती है कि हमारे सब अच्छा बर्ताव करते हैं तो अच्छा बर्ताव सबके साथ में करे, हित का बर्ताव करे, उनके सुख का आराम का और हित का। तो पर हित से इस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अधमाई, तो ऐसे शुभ कर्म मन से चले जाएंगे, हमारा वर्तमान भी शुद्ध होगा और संचित में भी शुभ हो जाएगा, फिर मरने के बाद कोई शरीर मिलेगा, मुक्ति नहीं होगी, अंत में भगवान की स्मृति नहीं होगी। तो शुभ संस्कारों से अच्छे घर में अच्छे संग में जन्म होगा, उससे भी फिर अच्छे काम करके मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते कर्म अच्छे करो, तो हम कर्म का विषय संचित होता है और क्रियमाण हम करते हैं वो भी पाप पुण्य करते हैं, उसमें शुभ शुभ हम संचित करेंगे तो अगर शरीर भी शुभ कर्मों के लायक शुभ बनेगा, संग भी अच्छा बनेगा। बहुत जन्म समर्जित है, पुण्य है, बहुत जन्मों से जो अर्जित किया है उनसे सत्संग मिलता है। तो पुण्य भी नहीं संता, पुण्य होते हैं उसे संग अच्छा मिलता है, संतों का अच्छा संग होता है, संस्था से विचार होते हैं, ऐसा संग मिलने से उन्नत होता है। तो संचित और क्रियमाण कर्म अब करते हैं, पुराने प्राप्त के अनुसार से सुख दुख आदि परिस्थिति बनती है, परिस्थिति में सुख दुख होता है, मूर्खता से बोल न करके धैर्य के साथ आगे चले। खुशी हो दुखी न हो गए, अनुकूल परिस्थिति में हर समय करे, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो घबरा गए नहीं, उसमें तो पाप कटते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं, अनुकूल परिस्थिति में पुण्य कटते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी होती है, जो हमारे को शुद्ध बनाती है, पापों का नाश करती है। अनुकूल वस्तु मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले तो वो सेवा करनी चाहिए दूसरों की, हमारे पास अधिक वस्तु है तो दूसरों को सुख कैसे हो, अभाव ग्रस्तों को दें, उनकी सेवा करें तो एक शुभ कर्म बनेगा, तो सेवा करें। और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भीतर में इच्छा का त्याग कर दें, अनुकूलता की इच्छा करने से प्रतिकूलता के समय दुख होता है और उसको दुख में मानकर तपस्या माने कि भगवान की ली हुई तपस्या है, बुखार आ गया, घाटा लग गया, घर में कोई मर गया तो ये पाप रूपी प्रारब्ध कर्म का फल है, ऐसा होने पर समझेंगे हम तपस्या करते हैं। रो करके आप जो भोगो तो भी पाप तो कटेगा, परंतु प्रसन्न होकर तपस्या मानोगे तो नया पुण्य हो जाएगा, नया एक तपोबल हो जाएगा। ऐसे अपने जान करके जो तप करते हैं, एक अपेक्षा आप से आप आया हुआ जो पाप का फल, ऐसी प्रवृत्ति जो प्रतिकूल है वो भगवान के दिया हुआ तप है। हम तो चाहते नहीं थे बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, मर जाए, परंतु ऐसे भगवान ने भेजा तो हमारे को शुद्ध करने के लिए, भगवान के सन्मुख करने के लिए भगवान ने कृपा की है, ऐसे कृपा कर उसको तप माने तो पाप तो मार्ग में कट जाए, पुण्य हो जाए, फल हो जाए, अगर ये अच्छा प्राण भर जाएगा उनसे अगर ये सुखी होगी। तो हरेक परिस्थिति वो भगवान की भेजी हुई समझे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे लिए अच्छी है। कहते प्रतिकूल अच्छी कैसे माने कि जैसे बुखार आया हुआ हो और सदवैद्य है, मगे पीयूष पानी है और हमारे हितेशी है, वो कड़वी दवाई देते हैं तो भी हम उनकी कृपा मानते हैं। अगर बुखार तो आया हुआ है, मुख और कड़वा कर लिया ऐसे नाराज नहीं होती। वो कड़वे मुख से क्या होता है कि दवाई मिलती है जिसे वो कटते हैं। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पूर्व के पाप कटते हैं, ये भगवान की कृपा है। ऐसे कृपा को माने तो कितना लाभ होता है। तो तपस्या माने, भगवान की कृपा माने, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति है वो जितनी लाभदायक है, इतनी अनुकूलता है वो लाभदायक नहीं है। प्रतिकूलता में तपोबल होता है और पाप पुराने कटते हैं और नए अच्छे काम बनते हैं। अनुकूलता में पुराने पुण्य कटते हैं और अनुकूलता के अभिमान में आकर धन आदि के अभिमान से पाप करते हैं तो पुराने पुण्य कटते हैं, नया पाप पैदा होता है। हिस्सो दीप्यति दीप्यो धर्माभिगत क्रामति, ऐसा आया है। वो हर्ष होता है, खुशी होती है, सुख हर्ष ही चलकर तो हिस्सो दीप्यति घमंड आ जाता है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी जनता, इतनी जायदाद इतनी है, इसमें घमंड आ जाता है। घमंड में आकर पाप करता है, धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। जितने धनी होते हैं वो पाप उनकी परवाह नहीं करते, गरीब होते हैं वो ख्याल करते हैं, वो समझते हैं कि किसी समय में दिया हुआ अपना पुण्य हो जाए तो अच्छी बात है। तो साधु है, भिखारी है, भूखे है, अंधे है, लंगड़े है, बीमार है, उनकी सेवा करते हैं। फिर सेवा करो जिससे अपना शुभ कर्म होगा। तो अगर ये शुभ परिस्थिति बनेगी और धन में अंधे हो जाते हैं, पद में अंधे हो जाते हैं, कोई सरकारी अधिकार मिल जाता है, औधा मिल जाता है, तो उसमें घमंड में आकर पाप कर दे, उसका नतीजा बड़ा भयानक होता है। इस वास्ते मनुष्य को अपने जीवन में सावधान रहे, हरदम सावचेत रहे, किसी का भी बुरा न हो जाए, किसी को भी दुख न पहुंच जाए, किसी का भी नुकसान न हो जाए, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ऐसे सावधान रहना है। ये मानव शरीर है, इसमें आप शुभ अशुभ दोनों काम कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी को बंदूक मिली, राइफल मिली, तो उसका नियम बता दिया, ऐसे ऐसे चलाना, भय के समय रक्षा के लिए चलाना, किसी का नुकसान नहीं करना। पर मिलने के बाद तो अवसर के ऊपर चला दे, फिर चाहे फांसी हो जाए पर चला तो सकते ही है। ऐसे मनुष्य शरीर है, इसको अधिकार मिला है, वो शुभ काम करने का मिला है, उसमें अशुभ भी कर बैठता है तो इसका दंड भोगना पड़ता है। अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, अपने कल्याण के लिए, पाप करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, झूठ कपाली बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने के लिए नहीं। ऐसा करते हैं तो उनका दंड बड़ा भाई भयंकर भोगना पड़ता है। इधम शरीर हम कौन थे, खेत हम, ये शरीर खेत है, तो खेत में जैसे बीज बोए जाते हैं वैसी खेती पैदा होती है। तो इसमें शुभ कर्म करोगे तो उसका आराम रूपी फल निकलेगा, और दुख दोगे अशुभ काम करोगे तो दुख रूपी बीज बोए हुए जैसे बुमूल के तो शीला सुराही पैदा होगी। ऐसे अशुभ कर्म वाली परिस्थिति भयंकर आवेगी। इस वास्ते मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। ये मानव शरीर है, मानव तन दुश्वार मौका लगे न बारम्बार, ये बार बार नहीं पाए जन्म की मौज, ये हरदम नहीं मिलती है। भगत पर मिल जाए मौका है, समय चूकी पूरी का पछताने का बरसा जब किसी सुखाने, मनुष्य ही मिला उसमें गफल में खो दिया, हीरो सोचे न मगमायो मुझ तेने, ऐसा चल बस बढ़िया धर्म मिला, ऐसा मौका मिला वो चुका दिया, तो ऐसे मौकों को चुकाना भी चाहिए। दो काम खास बताया मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करने, आराम पहुंचाना, मान देना, आदर देना, सत्कार देना, महिमा करनी, किस तरह से उन दो पदों उनका सुधरे, सबका कल्याण कैसे हो जाए, उद्धार कैसे हो जाए, ऐसे मन में भाव रखे तो भगवान बड़े खुश होते। भगवान पर असर पड़ता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो अभी मेरे मन में सबका कल्याण हो जाए ऐसी जोर से नहीं आती। इसकी साधारण स्थिति है, शक्ति भी साधारण है, विद्या भी साधारण है, पर फिर भी ये सबका कल्याण चाहता है, सबके कल्याण उद्धार के लिए चेष्टा करता है, तो भगवान पर भी असर पड़ता है। तो भगवान उनको मौका देते हैं कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। इस वास्ते सदा अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो अच्छा संचित बनेगा, अच्छा संचित बने तो अच्छा शरीर मिलेगा, फिर अच्छा काम करेगा। सुपात्य दानात भवे धनाढ्य, धन प्रभावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात स्वर्गम प्रजाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव भूमि। तो सुपात्र की सेवा करे, सुपात्र को दान दिया जाए तो उनसे धनवान बनता है। सकाम भाव से किया, निष्काम भाव किया जाए तो अंतगण शुद्ध निर्मल होता है, परमात्मा की प्राप्ति में सहायता होती है। सकाम भाव से किया जाए तो सुपात्र दान तो धनाढ्य धनी होगा, और धन प्रभाव ही नहीं करो जी पुण्यम, क्योंकि पहले शुभ काम करता आया है तो स्वभाव शुभ काम से शुभ काम करेगा, धन के बल उपकार करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वहां से प्रसन्न होगा नीचे, तो यहाँ फिर भी पुण्य कर्म करेगा, क्यों पहले का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण से पुनर्धनाज्य पुनर्व भोगी ऐसा होता है। कुपातिलाना भवे दरिद्र, दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, पापी का संग करे, पापी को दान दे, इसमें पाप लगता है। इसमें दान देने में अन्न जल वस्त्र औषधि चार चीजों के लिए छुपात कुपात नहीं, आवश्यकता अनुसार उनको देना चाहिए। कोई पापी भी है, अगर भूखा है तो उसको भी थोड़ा अन्न ले जाना चाहिए, जिससे प्राण रह जाए, उसको कपड़ा दे दिया, जल पिला दिया, अन्न खिला दिया, रक्षा कर दी, तो वो भी अच्छी है। तो ये नए कर्म शुभ करने की बात है। तो एक जैसा शुभ कर्म करना, एक भगवान को याद रखना, एक सबकी सेवा करना, ये खास मनुष्यता है। अगर ये नहीं करता तो मनुष्य पड़े से गिर जाता है, मनुष्य पड़ा नहीं रहा। ऐसे मनुष्य बनाया भगवान ने तो मनुष्य लायक काम करो, मन हित करो, उपकार करो, सबका भला करो, अपकार क्यों करो, नुकसान किसी का क्यों करो। यह स्वतंत्र कल्याण करने के लिए दी है, नरकों में जाने के लिए नहीं दी है। 84 लाख जोड़ी में दो पाने के लिए ये स्वतंत्रता नहीं दी है। स्वतंत्र देगा अपना अच्छा काम करके शुभ गति प्राप्त करो, अपना कल्याण प्राप्त करो, उसी लिए दी है। इस वास्ते मनुष्य ये मिल गया तो बड़ी सावधानी से जीवन बिताओ, क्योंकि बढ़िया शरीर है इससे बढ़िया काम होते हैं, उत्तम काम होते हैं, तो उत्तम कामों के द्वारा अपना बढ़ाव होते हैं। तो ये क्रियमाण कर्म से बना था संचित, संचित में से निकाल वाले प्रारब्ध बनता है, उसमें तीन चीज खास बनती है। एक जन्म होता है अच्छे बुरे घरों में, एक आयु मिलती है इतने स्वास्थ्य इतने वर्षों की उम्र मिलती है, और एक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिली, तीन से जात्यायुर्ग होगा, ये तीन चीज प्रारब्ध से मिलती है। तो प्रारब्ध से मेरे उनके लिए बढ़ाना हो तो बढ़ा दो अपनी चीज, मानो जितना अनाज मिला वो दान देंगे फिर पुण्य कर लो तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, निष्काम भाव से दिया जाए तो। तो ये तीन चीज है, जन्म और आयु होती है और अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ये चीज आएगी, तो वो अनुकूलता में दान दे, सेवा करे। शरीर अच्छा दिया है तो शरीर के द्वारा सेवा करे, भगवान ने धन दिया है तो धन द्वारा करे, विद्या दी है तो विद्या के द्वारा उपकार करे, पद दिया है कोई पद अधिकार मिल जाए तो अधिकार के द्वारा, जो अपने पास में सामर्थ्य मिले उसके द्वारा उपकार करे, हित करे, तो वो बड़ा सुख हो जाता है। तो भगवान के दी हुई सामर्थ्य है वो हितकार में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, जिससे ठीक हो जाए। ये दो चीज मनुष्य के लिए खास है, सेवा करना, भगवान को याद करना, इससे क्रियमान अच्छे बनेंगे, फिर उसका प्राण अच्छा बनेगा, शरीर अच्छा बनेगा, फिर अस्त संस्कार अच्छा काम कर मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। भगवान का भजन करे, गीता का अभ्यास करे, सत्संग करे, सदविचार करे और ज्ञाना उचन करके तत्व को समझे कि परमात्मा तत्व क्या है, भगवान की भक्ति को समझे, भगवान का प्रेम प्राप्त करे, भक्तों के चरित्र पढ़े, भगवान के चरित्र पढ़े, उनसे सीखे, तो इसका अंतर्गत निर्मल हो, अच्छी अच्छी बातें पैदा होने लग जाएगी। जब अच्छा संग करता है तो भाव अच्छे बनते हैं, कुसंग करता है तो भाव खराब बनते हैं। ये संग का प्रभाव पड़ता है और विचार का शस्त्रास्त्रों का प्रभाव होता है, तो में आकर मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपन समय बिता रहा है। प्राण बना प्राणचय शरीर शरीर शुभ अशुभ कर्म, उस शुभ अशुभ कर्म के अनुसार से अगर गति होती है तो गति में शुभ शरीर मिलते फिर शुभ कर्म करता है तो वो उन्नत हो जाता है। तो ये कर्म जितने गए तो भी अपने को ऊंचा नीचा धन देने के लिए कारण होते हैं। कर्म न सुख से स्याहू सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक कर्म का निर्मल शुद्ध फल होता है, रस रजोगुण कर्म का दुख होता है और अधो जो कर्म पाप के किया जाए अज्ञानम तमस फलम, उसका अज्ञान फल होता है। और अगर ही जाने में ऊर्जन गतिशतवस्था सतोगुण में स्थित रहते हैं ऊर्ज लोग होते हैं और रजोगुण में स्थित रहने वाले मध्य लोग में मनुष्य लोग में आते हैं और तमोगुण रखने वाले अधोगति होती तामसा उनकी अधोगति होती तामसी बच्चे हुआ। तो अच्छा कर्म करे, अच्छा ही संग करे, अच्छे पुस्तक में पढ़े, अच्छा ही विचार रखे, अपने विचारों को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए सत्संग करे, तो सत्संग के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। भजन ध्यान सत्संग सेवा करके जो शुद्ध बनते हैं वे अपने उद्योग से निर्मल बनते हैं। अब सत्संग मिल जाता है तो एक गोद चला जाता है, तो गोद जाने वाले को खुद को कुछ करना नहीं पड़ता, आप से आप शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए सत्संग जब मिल जाए अच्छा पारमार्थिक तत्व की तात्विक बातें मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत विशेष कृपा की। भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग मिलते हैं। जैसे माता है वो कहीं मर रही है तो जिस बेटे पर ज्यादा स्नेह होता है उसको बुला कर बेटा इतना नहीं गहरा है तेरे को देती हूँ, ऐसे भगवान का कोई लाडला होता है ना भजन ध्यान करने वाला तो शुभ कर्म शुभ फल भगवान उनको देते हैं। तो विशेष करके भगवान के दरबार में बढ़िया चीज क्या है, संत महात्मा है, ये उनके खजाने की चीज है। तो विशेष कृपा करते हैं भगवान तो वो खजाना देते हैं, अच्छी बात अच्छा संग लेते हैं, फिर उनका फल अच्छा ही अच्छा होता है। सावधानी से सदुपयोग किया जाए, भगवान की कृपा कर देते हैं परंतु वो सत्संग ठीक नहीं समझता और उसे उपयोग ठीक नहीं करता, उपेक्षा कर देता है, अच्छे बातों को ध्यान नहीं करता तो फिर उसको सत्संग नहीं मिलता। जैसे माता पिता लड्डू जल उनको पेशाब की नाली में फेंक दे तो थप्पड़ मिलती है फिर लड्डू नहीं मिलता, और वो खावे अपने मित्रों को दे भाई बहन को खिलावे खावे तो उसमें माता पिता राजी हुए फिर देते हैं। ऐसे भगवान कृपा करके शुभ अवसर देते हैं तो उसके द्वारा दूसरों का अपना हित करो जिससे भगवान खुश हो जाए, फिर वो मौका देंगे फिर मौका देंगे फिर सत्संग करेंगे फिर सेवा करेंगे सबको सुख पहुंचाएंगे हित करेंगे, उसमें सुख होते होते ऊंचे ही चले जाएंगे। जैसे मकान बना हुआ दीवार के ऊपर ऊंचा चला जाता है और अपने जड़ी खोदने लगता है पाप करता है अधो कुछ ही चला जाता है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपने समय का सदुपयोग करना है, जितना सदुपयोग करेगा उतने उद्धार होगा। हमने एक बात पढ़ी है बड़ी सुंदर, कहते ये जन्म मरण कब से शुरू हुआ तो शास्त्रों में सब अनादि अनादि कहते हैं, पर एक बात मैंने पढ़ी ये है शुभ अशुभ का जन्म कैसे होता है, तो कहा कि जो मिली हुई स्वतंत्रता है मिले हुए अधिकार है उसके दुरुपयोग करने से जन्म मरण हुआ है। सदुपयोग करें सदुपयोग करें तो इसका उद्धार हो जाता है, फिर सत्संग सा खुल जाता है। तो मेरी हुई संत स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करने कल्याण हो जाता है। और सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य स्वतंत्र है। सदुपयोग क्या, दूसरों के हित के लिए काम करे, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, धन से, और उनका हित हित करे, ये सदुपयोग है। और वही धन से पाप करे, अन्याय करे, अभक्ष भक्षण करे, चोरी करे, व्यभिचार करे, अनाचार करे, अत्याचार करे, दूसरों को कष्ट पहुंचावे, तो वो भी शक्ति करता है। पैसे के द्वारा चीजें खरीद के बाजार को तेज कर दिया जाए, लोगों को वस्तु मिले नहीं, ऐसा कर दिया जाए, तो धन के द्वारा अपकार कर रहा है। किसी कोई को पद मिल जाए, आकमादी बन जाए, तो दूसरों को दुख देता है, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। और अपने को शक्ति मिल जाए, हित करता है, सबका भला करता है, तो सदुपयोग करता है। तो दूसरों का हित करने में लगावे, दूसरों का अपकार न करे, किसी को दुख न दे, ऐसे मनुष्य में सावधानी से अपना बर्ताव करे। नारायण 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 नारायण।